गोपियों के निकट हैं। तो गोपियां हंसने लगी ताली बजाकर और उनको चिढ़ाने लगी, देखो तुम्हारी तो विवाह करने की बड़ी लालसा है और तुम्हारे माता पिता ने भी बहुत विवाह करने की चेष्टा की, एक तो तुम काले हो और दूसरी बात तुम्हारे अंदर में विवाह की इतनी लालसा प्रबल हो गई कि जहां तहां तुम विवाह कर देना चाहता जिस किसी भी गोपी से। किंतु आज तक कोई किसी गोपी का माता पिता आज तक तुमसे शादी देने के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए इतने बड़े हो गए आपकी शादी कहीं हुई ही नहीं, इसका यही कारण है। बल्कि कोई भी लड़की आपसे शादी करने के लिए नहीं तैयार है, न वहां के माता पिता है, इसलिए आपकी आपका ब्रह्मचर्य है वो तुरंग ब्रह्मचर्य। अर्थात तुम्हारे सुंदर मुख के मधुर हास्य से ये जो हमारे अंदर में प्राप्ति की आशा आप समझते हैं ये मत समझिए। सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम आप तप्त आपतना, आपका हृदय ही कामना से तप्त हो रहा है। पद संप्रदाय ने चतुर्थी विभक्ति ना होकर के षष्ठी विभक्ति दिया, इसलिए हम लोगों के संबंध में ऐसा मत सोचिए ब्रज में ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए हे पुरुष भूषण तुम्हें तब तक गोकुल वधू जन्म उत्कंठा बसित भूत भैया तुम्हार पुरुष सखा गण के गोकुल वधू बेसे सजाइया था, इसीलिए तुम्हारी आकांक्षा कभी पूर्ण नहीं होती तो सुबल को स्त्री बना करके उसी के साथ में विवाह इत्यादि की लीला संपादन, तो वैसे ही आपका ब्रज की कोई स्त्री आपसे शादी नहीं करेगी। अतः पुरुष भू पुरुष भूषण संको उसमें से निकाल दिया, पुरुष भू शब्द का अर्थ है पुरुष सत्ता, पुरुष सामान्य पुरुष जाति साधारण पुरुष जाति। अतः पुरुष भू तुम्हारे यही स्वभाव है पुरुष जाति मात्र कलंकित भैया से सन सन माने दोष, तुम्हारा ऐसा स्वभाव ठीक उचित नहीं। अतः कलंककारी से सकोप संबोधन सकोप पूर्वक वक्रोक्ति के द्वारा कृष्ण से ऐसा और उषण शब्द का अर्थ होता है पीड़क संताप उस धातु रुजा विश्वनाथ चक्रवर्ती का भी ऐसा। साधारण भाव से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गोपियों की यह कामात्मिक भक्ति रागात्मिक भक्ति को देख करके उनके हृदय में लालसा उत्पन्न होगी किसको, जिसको आसक्ति हुई है। ऐसे ही इसी प्रकार की हम सेवा करें, यह साधारण रूप में करें, अभी विशेष रूप से नहीं करें, विशेष रूप में तीसरे श्लोक में बतलाएंगे। सिद्ध गोपी भावाश उसके संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आसक्ति होने पर सिद्ध भाव आश्रय करके मन मन ही यह सिद्ध कर या भवन रात्रि दिने राधा कृष्ण
चरण
उसके समय दीक्षा अलखा वृत मुखम तब कुंडल स्त्री गंड स्थला दर्शुदम हसितावलोकम दत्ता भयं च भुज दंड युगम विलोक्य वक्ष श्री कर्मणं च भवामि तस्य।
রাগ অনুরাগ ইত্যাদি এই সমস্ত বস্তু সিদ্ধিতে হবে, এই এই জগতের বস্তু না, এই জগতে কেবল উৎকণ্ঠাময় ভজন হতে
হবে,
লালসাময় ভজন। আবার কালকে করছিলাম
এগুলি লোক তো হবে তো লোক হয়ে আরো বেশি শ্লোক হয়ে হাওয়ার সাথে আরো বেশি খাই খাবে নতুন কিছু থাকবে তারপরে গুলি করে সত্যনাথ ঠাকুর বলবেন এসে শ্লোক কি দেখা এখানটা হয়ে গেছে। ও মুখ অলকা বৃত ও কুণ্ডল শোভা অধরম মৃত গণ্ডস্মিত মন লোভা অভয়পোদ ভুজ যুগ সেবিত শ্রী সেবিত বক্ষ দেখিয়া হলাম দাসী সেবা কার সিদ্ধ গোপী ভাব কা আশ্রয় ये इसी समय में इसके बाद में आसक्ति होने के बाद में उसके प्रति आशा जगेगी या वो अभी जो भी सब चल रहा है इसलिए इन श्लोकों को पढ़ करके साधकों के हृदय में ऐसा हो सकता है। ओ मुख आपके मुख हर बिंदु को हमने देखा हंसते हुए अलग आप प्रथम जैसे वो बतला रही है राष्ट्रपंच अध्याय के अधर अमृत गंडे स्मित मन लोभा अभयपद भुज युग सेवित वक्ष देखिया हलाम दासी सेवा उनके मन में ये लालसा जगी रगन का भक्तों जिसके लोग और उनका स्मरण कर रहे हैं इसमें कृष्ण के वस्त्रक्षल पर दो तरह के चिन्ह हैं एक भृगुलांचन चिन्ह है और एक शिव वक्ष है दो है दोनों एक है कि दो है भृगु ने जब लात मारा तो एक चिन्ह होगा और लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या करने पर उनको फूल रूप में कोई जगह न दे करके केवल यहां पर चिन्ह के रूप में स्वर्णा स्वर्ण चिन्हों के रूप में उनको
दक्षिण रमा बोली
उसके रूप में उन्होंने रखा दोनों दो चीजें एक चीज नहीं है एक है बाम वक्ष पर और एक भृगु जी ने लात मारा वो कहां मारा
दक्षिण
में मारा
वही दक्षिण में मारा
और बाम में स्त्रियां कहां रहती हैं पुरुष के बाम में रहती हैं इसलिए कृष्ण के बाम दिशा में ही वो रहेंगे कौन लक्ष्मी जी जो स्वर्ण किंतु दक्षिण रोमावली दक्षिण से बाम से नहीं दक्षिण रोमावली जैसे शंख होता है एक होता है दक्षिणायन शंख की
दक्षिणावर्त
और एक होता है अधिकांश जितने भी शंख हो गए वो सब बाएं तरफ से दक्षिण दिशा में चलते और दक्षिण वाला जो शंख होता है वो दक्षिण में होता है इस तरह से उसका और होगा इस तरह अधिकांश मिलता है इस तरफ से
बाएं
तरफ से इधर में इधर वाला मिलना बड़ा कठिन है वो जिसको मिलता है वो जैसे उनको मिला था द्वारका में जिसके पास में चिंता मंगी थी श्यामल तक
सत्याजीत
के बाद में अरे अकुल को पहले मिल करके तब वो श्यामल तक में जैसों के मणि हार सकते तो कहते हैं कि जिसके पास में ये दक्षिणावर्त शंख होगा उसकी समस्त कामनाएं धन जन प्रतिष्ठा सब कुछ उसको प्राप्त हो जाए और ऐसा होता भी बाएं वाले में नहीं होता तो दक्षिणा वाला कहाँ रहेगा ये लक्ष्मी जी कहाँ रहेंगी कृष्ण के बाम पर और भृगु ने जो लात मारा था वो मारा था दक्षिण तो दक्षिण में भृगुलांचन का चिन्ह है और इधर में दक्षिण रोमावली के रूप में वो चीज वो लक्ष्मी जी है तो यहाँ पर जो बक्षा श्रियई कर्मणं च भवाम दास यहाँ पर सर्व लक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका जी से तात्पर्य स्पष्ट रूप से इसलिए भिक्षा लखा
वृतम पृथक कुंडलस्य, ये श्रीमद भागवत के वर्णन को सुन करके इनकी लालसा जगी, ये कृष्ण की मैं दासी हूं। इसलिए कह रहे हैं अभय पद को देने वाले, अभय को देने वाले आपके जो दो भुजाए हैं और श्री के द्वारा सेवित आपका जो वक्ष है, जिसको देख करके मैं आपकी दासी बन गई सदा के लिए। इसलिए हे पुरुष भूषण, हमको अपना दास। यहां पर यह बतलाने पर भी कुछ गुप्त छोड़ दिया भक्ति विनोद ठाकुर ने। अब वो कहते हैं यहां पर यह होने पर भी किस भाव से भजन इसमें नहीं दिया, इसे उसको स्पष्ट करने से कुरवंत ही कई। अतः यहां पर पार्थिव भाव का उत्कर्ष इस श्लोक में वर्णन करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। इसके संबंध में हम लोग कल आलोचना आज पंथा कृपा सिंधु पतितान।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायके कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नन्दे गौरवत्ते हे कृष्ण परमात्मा दीन बंधु जगत्पति गोपेश गोपिकाकं राधाकान्तमस्तु सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभान सुते देवी प्रणमामि चरि आदेवी का तू हर दृदया जगाशा ज्ञाते निपत्तमो विदंदवतो दुखकारिते अस्य प्रसाद मधु वर्षमस्य दुखा गंधर्वी के तो गणे गण। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा भजन और कृष्ण के प्रति आसक्ति होने के बारे में उसके हृदय में राधा जी के कंकर्य का भाव भी थे, उसके लिए एक श्लोक किया कि सुख दुखी भाव के प्रति स्वयं इच्छा लोग उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में कह रहे हैं कि ये इस फल है भारतीय भारतीय भावित उत्पल उस समय उसी भाव के प्रति उत्पर्ष वो समझेगा जो यही श्रेष्ठ चीज है, ये श्रेष्ठ उपासना है। इसके लिए श्रीमद् भागवत ये एक श्लोक उद्धृत किया। कुर्वन्त ही कई रतिं कुशल आत्मा आत्मा नित्य प्रिय पति सुतादि आर्ति दैकिं तन्न प्रसीद परमेश्वर मा प्रचंद आसानुभृतां वै चिरादरविन्द नित्ये। जब कृष्ण को कह रहे हैं कि तुम लोग अपने अपने घरों में लौट जाओ और पिति का धर्म है पति की सेवा करना, जैसा भी वो लंगड़ा लूला पर बतलाया जैसा भी है उसका सेवा करना ही पिति का कर्म धर्म। और भी युक्तियां उन्होंने शास्त्रों से दिखलाई, गोपियां उसका उत्तर दे रही हैं और कल से उसी के उत्तर में हम लोग आज से करीब करीब 400 वर्ष पहले महाप्रभु के बाद और उस सनातन गोस्वामी के प्रकट होने के बाद जी गोस्वामी के अंतिम दिनों में वैष्णव में एक गंभीर विवाद छिड़ गया। परकी और स्वर्गीय बात के संबंध में जी गोस्वामी ने भी अनाधिकारी लोगों के लिए परकीय बात न स्थापन करके स्वर्गीय बात की ही स्थापना की। इसके बाद में जी गोस्वामी के स्थापन से सब लोगों की बात मान करके परकीय बात को एक तरह से हटा दिया। किंतु और जो थे रघुनाथ दास के सामने रूप गोस्वामी के डायरेक्ट शिष्य थे, डायरेक्ट उनका संबंध हुआ, इसलिए वो लोग भजन करते रहे। हमारे जितने भी गुरु गोस्वामियों के ग्रंथ हैं उन सब में रूप गोस्वामी के विचारों के अनुसार में ही उसी का परकीय बात का ही उत्पर्श दिखलाया गया, श्रेष्ठता स्थापित की गई। किंतु जी गोस्वामी हमारे संप्रदाय के पूर्ण विद्वान और अपने समय में विश्व वैष्णव राजसभा के जो
सम्राट
प्रधान पात्र थे, अध्यक्ष थे, इसलिए उनके कहने के अनुसार में साधारण लोगों ने परकीय बात की, बात मानकर स्वकीय बात की। कुछ कुछ ऐसा जी गोस्वामी ने देखा, जैसे गोस्वामी ने जो कहा है उसको दबाना तक संभव नहीं है, तब अनाधिकारी लोग उसमें उस रास्ता को गलत न कर कुछ न कर दें, इसलिए अपनी जहाँ भी टीकाएँ आई उसमें भी बहुत सावधानी के साथ में स्वकीय बात की स्थापना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के समय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने देखा कि ये तो सब लुप्त हो जाएगा इस बगीचा, इसलिए डायरेक्ट रूप में उन्होंने परकीय बात की स्थापना की। और स्वकीय बात में क्या क्या दोष हैं ये सब उसमें प्रीति नहीं हो सकती, उसमें हमारे रूप गोस्वामी का विचार, जीव गोस्वामी का भी विचार, सब गोस्वामियों का विचार लेकर के उसको लिखा। हम लोगों के खोज गौड़ीय वैष्णव में भी दो प्रकार के विचार और इसी का ये लाभ लेकर के और संप्रदाय के लोग भी, निम्बाद संप्रदाय के लोग, रामानुज संप्रदाय के लोग, रामानंदी लोग और जो थे वो सब लोग गौड़ीय वैष्णव के ऊपर में कटाक्ष कर रहे हैं। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने समुचित उनका उत्तर दिया, जो जो शंकाएं उठी उन्होंने सबका निराकरण, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्रभाव को भी दिखलाया, गोपी वेश धारण कर दिया, मारने के लिए उनको आए तो इतने में गोपी बन गए। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किधर गया, तो हंस करके पहले से मैंने देखा तो था कि उनको फिर कहाँ चले गए मुझे मुझे पता नहीं। और थोड़ी देर के बाद में हंस करके और कोई भी सुना चक्रवर्ती ठाकुर हो करके जाने लगे, अरे वही तो लड़की भी सुना चक्रवर्ती ठाकुर होगा, बस उनके चरणों में गिर करके बड़े बड़े विद्वान लोग भी थे तो उनके पक्ष में, इस तरह से सब प्रकार से इसकी स्थापना युक्ति दिया, जो कि श्रीमद् भागवत ने भी युक्ति दिया है, विशेष करके युक्ति दिया उज्ज्वल नहीं मणि की टीका है, क्या उसका नाम
लोचन
लोचन इनकी उसमें दिया। भक्ति विनोद ठाकुर जी इनके उसके बाद में भी सुना चक्रवर्ती ठाकुर के बाद में बलदेव जी विद्याभूषण जी हुए दार्शनिक विचार मौर्य वैष्णव की रक्षा और इस विषय में भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ पर पार्थिव भाव का उत्कर्ष दिखलाते हुए उन्होंने दिया भक्ति विनोद ठाकुर जैसा आदमी कोई भी विद्वान नहीं दिखा परमात्मा है भागवत का प्रत्येक श्लोक उसका अंतर्निहित उद्देश्य को जैव धर्म में लिया है अतिथि भेदाभेद के संबंध में और जितने भी विचार हैं नौ जो प्रमेय दस मूल हैं दस मूल प्रमाण उस सब में उन्होंने कहाँ कहाँ से उसमें भागवत के श्लोक तक खोज करके लिया तो वही यहाँ पर अपना है गोपियों में भी गोपियाँ स्वकीय परकीय भेद उनमें नहीं है हैं सभी पार्कीय किंतु तो भी उनमें कुछ स्वकिया दी है स्वकिया मैंने इस मतलब से नहीं कि वो परकिया नहीं है परकिया नहीं स्वकिया जो कि कत्यानिवृत्तिया था अकृष्ण तो पति के रूप में पाने के लिए उन्हीं को उन्होंने
स्वकिया दी
किंतु वो यथातथ स्वकिया नहीं परकिया में ही स्वकिया कुर्वन्त ही त्वयि रति कुशलास्मा नित्य प्रे ये पतिसुताभिः आर्तितैः किं तुमि प्रिय आत्मा नित्य रति अभाजन कृष्ण के लिए ये कारण कौन करें रगात्मी का भक्त वाली को जिसको सुनकर किसी को उसके प्रति लोभ हो सकता उसके तुम ही आत्मा के जीवात्मा के रति के भाजन और नित्य प्रिय हो जी मात्र के लिए कोई भी एक इधर का उधर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है ना हवा भी आता आत्मा और रति के भाजन रति के भाजन मैंने तुम्हें रति के विषय आरती दाता पति पुत्रे रति अकारण आरती मैंने दुख देने वाले पति पुत्र इत्यादि में जो रति होती है वो आरती का कारण दुख का कारण है आज तक विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जगत विश्व ब्रह्मांड में किसी भी शास्त्र में या दूसरे भी देशों के शास्त्र में जो इस जगत में कोई सुखी हो सकता और शांति हो समस्त विश्व ब्रह्मांड का वैभव मिलने पर भी प्रतिष्ठा मिलने पर भी कोई सुखी और शांति से रह ऐसा कोई उदाहरण नहीं इसलिए कहते हैं पति पुत्र जैसे नल और दमयंती सत्यवान और
सावित्री
और भी हजार उदाहरण पति और स्त्री और पुत्र पिता के संबंध में माता पिता के संबंध में बहुत उदाहरण है जो कि चरम सीमा में उनके प्रति सेवा की बुद्धि हो नव दमयंती के संबंध में श्रीमद् भागवत में वर्णन सावित्री सत्यवान के संबंध में भी पुराणों में वर्णन जब उसकी आत्मा को लेकर के जा रहे हैं तो वो छोड़ नहीं रहे तो वो कह रहे हैं तुम पर ले लो फिर तो बर लेती 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 अंत तक यहाँ तक पहुंची, ये पति के अतिरिक्त हम रह नहीं सकते, उनको बाध्य होकर से देना पड़ा। किंतु कहाँ वो रह सके एक साथ में, नल दमयंती का सब जहां भी देखते हैं, ये जगत ही दंड के लिए बनाए, ये जेल खाना, यहाँ पर कुछ शांति कुछ रह नहीं, यहाँ के सभी कुछ अनित्य है। इसलिए जगत किंतु सत्य है, जगत सत्य है, यह शरीर भी सत्य है, किंतु इसमें मैं और मेरा की बुद्धि ये असत्य है और जगत नश्वर है। जगत कभी भी झूठा स्वप्न ये सब है, किंतु इसमें आसक्ति का होना ही, मैं और मैं को होना यही दुख है। इसे इस जगत में इस शरीर के द्वारा यथार्थ पर कोई पति पुत्री इत्यादि का जो संबंध दिखता है, ये सब अनित्य है, क्षण स्थायी है, बस अधिक से अधिक एक जन। इसलिए कहते हैं आरती दाता पति पुत्री रति अकारण अकारण, बड़ा आशा करी आई हूं तुम्हार पर, हम बड़ी आशाओं को लेकर के तुम्हारे चरणों में हम आए। तन्न प्रसिद्ध परमेश्वर मासिंद आशा भीतान, बहुत दिन खिरा चिर काल से आशा लेकर के आए, तुम ही एकमात्र रति के विषय हो, प्रति के विषय हो, और हमारे लिए विश्व में जितनी भी आत्मा है उसके आप प्रिय हैं, बड़ी ले आशा लेकर के आई थी। कमल लाइन हेर प्रसन्न प्रसन्न आप प्रसन्न होकर के हमारे मन प्रसन्न, यहाँ पर जी गोस्वामी जी अपने पिता में बतला रहे हैं। संसार में जो महाभाग्यशाली जीव है वो तुम्हारे इस लड़के के प्रति तृप्ति करते हैं, ये कहें दरगाह चाहते करें कृष्ण के नाम करण के समय, गौशाला में रोहिणी और जसोदा मैया अपने अपने सद्यजात शिशुओं को लेकर के मां हो गई, नंद बाबा वहां कर केवल यही तीन ये और दो बच्चे और कोई नहीं, वहीं से गोबर से लिपटे आ गया गौशाला के अंदर में, वो लिपा हुआ आपको हरिए और शिशु में बैठ करके नाम करेंगे, कंस को इसकी गंध न लग जाए, जो हमारे बाल बच्चों का नामकरण कौन कर रहा है, वो संडिल हे संडिल को नहीं बुलाया, क्यों, दिन तो तारीख पहले से धैर्य नहीं था ये नामकरण होगा, वो तो बाई चांस गर्गाचार्य आ गए और गर्गाचार्य इस विषय में संडिल से भी अधिक श्रेष्ठ थे और बिना बुलाए जब आ गए, बिना बुलाए नहीं आए, भीतर भीतर वसुदेव जी ने
प्रेरणा दी,
कहीं संजय जी इसका नामकरण न कर दे गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए नामकरण और उपवित संस्कार और विवाह ये तीन चीज ब्रज में नहीं होनी चाहिए, जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी ब्रज में तो सब
गड़बड़
उलट पुलट जाएगा सब मामला है, इसलिए नामकरण भी नहीं करने दिया और साथ साथ में उपनयन संस्कार भी यहाँ नहीं होने दिया और साथ साथ में विवाह इत्यादि, ये तीन चीजें वहां पर नहीं दी, इसमें योग माया जी मुख्य है किंतु वो सब वसुदेव जी के माध्यम से, इसलिए अपने पुरोहित को भेजा और वो आकर के करें, बड़ी सुंदर श्याम जोड़ी है, पहले नाम रखा बलदेव जी का, बड़ा लड़का जो है बड़ा बलवान होगा और बहुत शक्तिमान होगा, सुंदर रम्य उसका स्वरूप होगा, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता, इसलिए बल का भी क्षत्रिय होगा इसलिए बल और सुंदर होगा इसलिए राम रमण करने इसलिए बल राम और बलदेव बल का भी क्षत्र होगा, इस तरह से उसका नाम करके और कृष्ण के लिए श्रीमद् भागवत में और सब वर्णन किया गया है।
तो उसमें बताया जैसे ये जो लड़का है ये प्राणी मात्र को अपने नाम रूप इत्यादि और गुणों के द्वारा आकर्षित करता है और आनंद को देने वाला होता है। और फिर ये कहते हैं कोई भी महाशाली अक्षौभाग्यशाली जीव मनुष्य इसके प्रति किया करते हैं नित्य काल के लिए, जो सौभाग्यवान होते हैं वही इसको इसका इसको प्रतीक करते हैं। संसार में कौन बुद्धिमान कौन है, कहते हैं भ्रष्टाचार्य के वचन के अनुसार में जीव गोस्वामी विचार कर रहे हैं सार और क्या सार है क्या असार है इस जगत में। इसका जो विचार करने वाले हैं ऐसे विवेक से युक्त मनुष्य ही कुशल है। कुशलात्म कुर्वन्ति ही त्वयि गति कुशला स्वात्म। कौन संसार में कुशल है? हम लोग समझते हैं कि अर्थ इत्यादि संग्रह करने वाले जगत की दृष्टि से उन्नत व्यक्ति को कुशल कहते हैं, क्योंकि वो कुशल नहीं है। जो लोग सार और असार, संसार में सार क्या है असार क्या है इसको समझने वाले, संसार क्या है सार, सार है कृष्ण का भजन ही सार है, इसलिए इस सार को जिन्होंने ग्रहण किया है कृष्ण के प्रति भक्ति कृष्ण के प्रति रति वो तो कुशल, और जो अकुशल कौन है जो कि असार को ग्रहण करने वाले उस संसार। किंतु नित्य प्रिय पति सुता भी आति दई हकी, जो लोग पति सूत आदि माने अर्थ संसारिक विषयों में रति माने जो प्रेम करते हैं उसके लिए अपना हमारा कल्याण होगा ऐसा समझते हैं वो ठीक इसके विपरीत। इसलिए हमको आपकी श्रेणी में रखते हैं, हम कुशल हैं कि अकुशल हैं। कृष्ण क्या उत्तर देंगे? हमने सब कुछ छोड़ करके ये पति पुत्र ये सब आरती देने वाले छोड़ करके हम प्राप्ता हम आपके चरणों के निकट में आए हैं, इसलिए वो कहती है स्वे आत्मे अर्थात आत्मा में जो आरती को देने वाले हैं आत्मा को जो आनंद देने वाले हैं कृष्ण के प्रति जिनकी रीति हो रति होगी वो तो सुख आनंद उपलब्धि करें, और जो इसके विपरीत पति इत्यादि सांसारिक विषयों में जिनकी स्थिति है वो आरती गई उनको वो आरती देने वाली होगी निश्चित रूप से। अभी नहीं मालूम हो रहा है तब किंतु कुछ दिनों के बाद में मालूम होगा। ऐसे भगवत विमुख जो कृष्ण भक्ति में बाधा देने वाले हमारे पति और पुत्र इत्यादि हैं या और जो दूसरे लोग हैं उनको छोड़ देना ही कर्तव्य। ये गोपियां अपने मन में होकर के कृष्ण को ये बतला रही हैं वही मैं हमको छोड़ करके उसे भक्ति नष्ट हो जाती है कृष्ण के प्रति नष्ट हो जाती है। कहां पर कृष्ण के प्रति बढ़ती है प्रीति वो हमारे लिए अनुसंधान कर जो अनुकूल है तब तो उसका हम संग्रहण करेंगे प्रतिकूल होगा तो
छोड़ देंगे।
इसलिए पहले श्लोक में हमने वो बतलाया था ना भित्री जो बसती
उपासना
ये बतलाया उपासना जहां पर नष्ट हो जाती है उसको छोड़ करके कुशल बुद्धिमान लोग कहां रहते हैं जहां पर भक्ति की वृद्धि की संभावना होती है। जहां पर भक्ति की वृद्धि नहीं होती उस स्थान को उस समाज को वो छोड़ दो जिनको कृष्ण भक्ति की जरूरत है। इसलिए उनसे हमारा क्या प्रयोजन है क्योंकि वो आरती देने वाली उनसे प्रयोजन नहीं है। यहां पर स्वपद वैचार स्वपदी
सर्वनाम होने पर भी शक्ति नहीं पहुंचे। इसके पहले उन्होंने भक्ता भजस्व श्लोक है
दुर्वग्रह दुर्वग्रह तजस्मान मातजस्मान,
अर्थात हम तुम्हारे चरणों के निकट में पहुंचे इसलिए तुम हमारा भजन को हम भजन करने के लिए आई हो, तुम्हें चरणों की सेवा करने के लिए। यहाँ पर भजन शब्द का अर्थ होगा उसे ग्रहण करना ही उनकी सेवा है, इसलिए हम उनकी सेवाओं को आप ग्रहण कीजिए। हम जो ये आशा को लेकर के आए हैं वर्णा प्रसिद्ध परमेश्वर हम इस आशा को लेकर के आए हैं तुम्हारी हम सेवा करेंगे और तुमको जो सुखी करेंगे, इस आशा को आप काटिए मत। आशा को काटने का तात्पर्य यह कि हम ये चिराग मैंने क्या बाल्यकाल से ही जन्म से ही हम इस आशा का पोषण कर रहे हैं, ये नई कुछ नहीं, बचपन से ही हम लोग तुम्हारे प्रति अनुरक्त हैं और तुम हमारे प्रति अनुरक्त हो। ज्ञानोदय के साथ ही साथ में इस आशा को हम क्रमशः बढ़ाती गई हैं, आशा लता को अभी आशा लता का छेदन करना आपको उचित नहीं है। ये आशा का बीज किसने दिया? स्वयं कृष्ण ने। वो धीरे धीरे प्रेम की लता बढ़ी और उसका छेदन करना कर्तव्य नहीं है। आम का पेड़ कोई लगाए और उसको कोई काट दे ऐसा कभी नहीं देखा, किसी कारण से काटने वाले भी होते हैं, किंतु सर्वत्र उसकी निंदा की गई है। आम के तो बात ही क्या, यदि कांटे का भी वृक्ष हो और कांटा वाला वृक्ष लगा दिया और उसको बढ़ाया फिर अपने हाथ से वो काटा नहीं जाता, इसलिए वो कहते हैं कि आप इसे अब काटिए मत। इसके द्वारा हम लोग जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा एकमात्र जीवन तुम्हें ही अवलंबन करके है। आशा लता खड़ी है किसी वृक्ष के ऊपर, जैसे वृक्ष काट दो तो आशा लता भी गिर जाएगी नीचे और सूख जाएगी। लौकी की बेल मचान के ऊपर में होती है और उसकी मचान को तोड़ दो कुछ दिन के बाद में सूख जाएगा, सूख जाएगी वो लता। ऐसे ही हमारा जो हमारे जीवन की जो लता है आशा, यदि इसको आपने काटा तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हे भरत, आपको समस्त वर्ग को देने वाले निश्चेष्ट हैं, वर्ग और जगह बनता है। आपने पहले वर दिया था, वर माने क्या,
वर देने
वाला, वर देने वाला जो वर दिया था वो वर क्या, तुम्हारा संकल्प में विविध हो गया हूं। उन्होंने कहा था मंत्र में आप हे देवी नंद के पुत्र कृष्ण को ही हमारा पति बना दीजिए। तो उस समय में कृष्ण ने वरदान दिया था, मैं तुम्हारे इस भावना को मैं जान गया हूँ और मैं ये दान देता हूँ कि अगले सर्व काल में तुम्हारी इन सब जो तुम्हारे मन में है उसको मैं पूर्ण कर दूंगा। तो आपने इसको और बढ़ाया, वरदान भी इसके लिए दिया है और फिर उसी को आप काट रहे हैं, तुम लोग लौट जाओ। इसके द्वारा उसने बतला है अरविंद नेत्रे चिरा अरविंद नेत्रे अरविंद नेत्रे के द्वारा ये बतला रहे हैं जिस प्रकार से शरद काल में स्वच्छ जल में कमल के गर्भ में जो शोभा होती है उसको तिरस्कार करने वाली या उसको चोरी करने वाले आपके ये नेत्र हैं शरद उदासय साधु जाति सब उसमें बताया है। इसलिए बिना मूल्य की हम आपकी दासी हो गई उस श्लोक में बताया है प्रथम श्लोक या द्वितीय श्लोक। ऐसा कोई जगत में नहीं है जो आपके इन नेत्रों को और आपके इस मुख मंडप को देकर के बिना मूल्य का कोई दास दासी नहीं हो।
एक जिनिस छोटे के निकाल दो पर ना प्रसिद्ध श्लोक के विश्वनाथ चक्रधर टीकर मध्ये एक दासी भाव स्वकीय तो स्वकीय भाव विवाहिता पत्नी और दासी भाव की कथा वयम दासी भवाम तो हमने दासित्वर विशेषत्व देखिए ओटा
ठाकुर जी कह रहे हैं संसार में जो महाभाग्यवान है वही कृष्ण के प्रति करते हैं। जो उनसे प्रीति करते हैं अपने शत्रुओं से कहीं भी पराभूत में पराजित नहीं होते। विशेष करके हम लोगों का शत्रु कौन है काम क्रोध लोभ मद मोह इत्यादि ये तो दूर हो जाएगा साथ साथ में और भी सांसारिक भी यदि कुछ हो वो भी पराभूत हो जाते हैं। विष्णु आश्रित सुरगण के जीवन विष्णु असुर हस्त सहित सर्वदा रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से विष्णु अपने आश्रित जो सुर देवता हैं उनकी रक्षा करते हैं उनसे असुरों को दमन करके उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भी के चरणों में जो रति करते हैं प्रीति रखते हैं उनको कोई भी व्यक्ति पराभूत नहीं कर सकता। गर्ग की गर्ग जी ने ऐसा कहा उसके अनुसार में विश्वास चतुर्गम इसलिए संसार के जो विश्वास भाजन और कुशल मनुष्य हैं सौभाग्यवान जीव हैं वो आपके इसके चरणों में कृष्ण के चरणों में प्रीति किया करते हैं। तुम्हारे रति विधान करिया था के एक कथा बोला जाए ना वस्तु तो तुम्हारे कहा प्रति रति स्वाभाविक सब जीवों की उन्हीं के प्रति रति है ये कहते हैं ये बल्कि ये नहीं कहते है किंतु आच्छादित है सब जीव प्राणी मात्र के का कृष्ण के प्रति रति है किंतु अभी वो प्रकाशित नहीं होती इसी के लिए कह रहे हैं स्वे अर्थात तू अपने कृष्ण जो है अपने आत्मा के ही प्रिय हैं शरीर से संबंध नहीं कर रहे हैं आत्मा से स्वाभाविक रूप में कृष्ण उनके प्रिय हैं क्योंकि उन आत्माओं की भी आत्मा आप ही हैं कृष्ण के लिए गोपियां कर रहे हैं अहंतास्पद सुकरंग नित्य प्रिय और तुम्हारे तहां दे जो प्रीति तहां वो नित्य बोलते उनकी जो प्रीति है वो नित्य प्रीति है। पति और पुत्र के प्रति नित्य प्रीति नहीं है जब जन्म लिया तब प्रीति हुई बड़े होने के बाद में वो प्रीति नष्ट भी हो जाती है इसलिए यह प्रीति नित्य नहीं है सांसारिक बदलती रहती है। आज पुत्र है वो महाकल पेपर में पैसा देखा जाता है उसको मार करके कोई खत्म कर दिया पुत्र ने ही मार दिया या पिता ने ही पुत्र को मार दिया इसलिए कहते हैं जो प्रीति है औपाधि की है अनित्य है। हम लोगों की तो कभी भी जीवन में पति और पुत्र के प्रति प्रीति रही नहीं क्योंकि वो आर्थिक और गोपियों के लिए तो वो आशा थी कि वो तो उनकी नित्य लादनी शक्ति है इसलिए उनके संग में कोई संबंध रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेष करके वो तुमसे मिलने, हमारे हमसे मिलने में, जब हम तुम्हारे लिए मिलने के लिए जाती हैं, जैसे आज ही आ रही थी अभिशाप के समय में, तो ये हम लोगों को बाधा देते हैं। अतः जीवन निरक्षा के निमित्त हमारे हम लोग को बचाए रखने के लिए, हमारे जीवन के निमित्त ही आप प्रसन्न हो। यदि वो हमारा अन्न करती विवाहिता, यद्यपि हम लोग दूसरों के द्वारा विवाहित हैं, इसलिए तुम ऐसा कर सकते हो जैसे हम तुम्हारे जीवन की रक्षा क्या करें, तुम्हारे पति तुम्हारी रक्षा करें, किंतु तुम ये कह सकते हो कि हम तुम तो हमारी पत्नी नहीं हो, इसका भार हमारे ऊपर में नहीं। आप कह सकते हैं आप तो दूसरों की पत्नियां हैं, तथे आप ऐसा यद्यपि कहते हैं, किंतु अनूढ़ा जो कि अविवाहित नहीं है, यहाँ पर ऐसी है
कुमारी,
किंतु कृष्ण के प्रति उनको रखी है, उनको क्यों रुला गए? हमको तनाव छोड़ दिया किंतु उनको क्यों रुला रहे? हे भरत, आपने ही तो ऐसा वरदान दिया है कि मैं तुम्हारा संकल्प विदित हुआ हूं, मैं समझ गया तुम लोग क्या चाहती है, और उसको मैं अगले संस्कृति में मैं पूर्ण करूंगा। क्या ये बातें आप भूल गए हैं? कृष्ण कहते हैं प्रति प्रसन्न होने का कारण कात्यायनी